अब आ गया ऐसे लोगों की दुनिया की दौड़ धूप, उसका क्या बनेगा। अमूमन इंसान जब किसी भी ऐसे शख्स को अच्छा काम करता देखता है तो सवाल पैदा होता है कि इनके अमाल का क्यामत में क्या वजन होगा। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब अगली आयतों में दिया, आयत 18, मसलुल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम अमालुहुम करमत, जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया इनके अमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो, वो अपने किए का कुछ भी फल न पा सकेंगे, यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक को हक पर कायम किया, वो चाहे तो तुम लोगों को ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए, ऐसा करना इस पर कुछ भी दुश्वार नहीं। कितने बड़े बड़े काम करता है अल्लाह ताला और उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। हम में से कोई अल्लाह की जरूरत नहीं है, कोई अल्लाह की मजबूरी नहीं है, और ये लोग जब इकट्ठे अल्लाह के सामने बेनकाब होंगे, जरा सोचिए इकट्ठे क्यों, लाइक माइंडेड लोग, एक जैसे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। फरमाया वहां ये सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे बेनकाब, बेनकाब आज भी हैं, अल्लाह तो दिलों के भेद भी जानता है, वहां दूसरों के सामने ये सारा मंजर आ जाएगा। तो इस वक्त इनमें से जो दुनिया में कमजोर थे वो इन लोगों से जो बड़े बने हुए थे, हाईलाइट कीजिएगा, दुनिया में कोई बड़ा नहीं है, कुछ लोग हैं वो खुद को बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि बड़ाई का और दुनिया में किसी भी इज्जत का अगर किसी को हक है तो अल्लाह की हस्ती है। इसलिए फरमाया जो खुद बड़े बने हुए थे, कभी दौलत के जोर पे कभी इक्तदार के जोर पे, कहेंगे दुनिया में हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए भी कुछ कर सकते हो। और ये वो सब बड़े होंगे जिनको देख देख कर गुनाह किए थे दुनिया में, वो जवाब देंगे अगर अल्लाह ने हमें निजात की कोई राह दिखाई होती तो हम जरूर तुम्हें दिखा देते, अब तो यकसां है क्या, ख्वाह हम जजा फजा करें या सबर, बहरहाल हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। आप देखिए जब माँ को बच्चे पे गुस्सा आता है ना तो बच्चा रोए, बच्चा चीखे या बच्चा चुप हो जाए, माँ चुप नहीं होती, माँ उसको डांटती ही जाती है। बिल्कुल यहाँ भी यही बात समझाई जा रही है कि आप जो मर्जी कर लो, अल्लाह ने तुम्हें जो सजा देनी थी वो देनी है। दुनिया में रोते धोते तो इसकी कोई कदर थी। इसके बाद आयत नंबर 22 तवील आयत है, इसमें क्यामत के दिन का एक मंजर है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जब लोग क्यामत के दिन हिसाब किताब के लिए खड़े होंगे और अभी इंतजार इंतजार और इंतजार चल रहा है, इतने में कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आएंगे, अपने बाकी रसूलों के पास जाते जाते हुए एंड पे अल्लाह के नबी के पास आएंगे, तो आपसे जाकर सिफारिश करेंगे कि जाइए अल्लाह ताला से कहीं हिसाब शुरू किया जाए। तवील रिवायत है, बड़ी खूबसूरत सी खुशबू उठेगी और अल्लाह के नबी वहां अल्लाह के पास जाएंगे। ये सारा मंजर कुफार और फासिकीन भी देख रहे होंगे, उनको बड़ी आर आएगी, कहेंगे हम तो सारी जिंदगी शैतान की मानते रहे, चलो आज हम उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुम भी हमारी सिफारिश करो, जैसे देखो नेक लोगों की सिफारिश नबी करने जा रहे हैं। तो वो जब शैतान के पास आएंगे और उसको कहेंगे कि आओ भाई तुम्हारे नाम पे हमने बड़े काम किए थे, आज जरा हमारी सिफारिश तो कर दो, तो वो क्या कहेगा, ये है शैतान की स्पीच। स्पीच करने से कुछ नहीं होता, वो शैतान को भी बड़ी खूबसूरत करनी आती है, असल बात अमल है। इसलिए बहुत खूबसूरत लफ्ज बोलने वालों की बात पे भी मत रहिए, असल अमल को देखिए कि अमल क्या है। अब आप जरा बिल्कुल मैदान हशर में जाकर सोचिए कि यहाँ क्या दिल पे गुजरेगी उन लोगों के जिनके बारे में वो कह सकते हैं कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था। वकाल शैतान लम्मा कुदिया अल-अम्रु, और जब फैसला चुका दिया जाएगा तो शैतान कहेगा हकीकत यह है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे। शायद पहली दफा ही सच बोल रहा है दुनिया में से जाने के बाद, यानी उसको पता है कि अल्लाह के वादे सच्चे थे और मैंने जितने वादे किए इनमें से कोई भी पूरा ना किया, है ना बेवफा, मेरा तुम पर कोई जोर तो ना था, मैंने इस किस का कुछ नहीं किया कि अपने रास्ते की तरफ तुमको दावत दी, यानी आई जस्ट इन्वाइट यू, आई डिडेंट फोर्स यू, और तुमने मेरी दावत पे लब्बई कहा, उछलते कूदते तड़पते हुए चल के आ जाते थे मेरी दावत पे और अल्लाह की दावत पे तुम सोच में पड़ जाते थे। शैतान को कितना पता है हमारा, अब मुझे मलामत ना करो और अपने ही आप को मलामत करो, यहां ना तो मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और ना तुम मेरी, सब बराबर है, सब कटहरे में खड़े, एक मुजरिम दूसरे मुजरिम की क्या मदद करें, एक जेल में बैठा कैदी दूसरे कैदी की क्या मदद करें। इससे पहले जो तुमने मुझे खुदाई में शरीक बना रखा था, यहां हाईलाइट करें ये कौन सी शराकत है, शिर्क फिल हुक्म। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो शैतान को सजदा करते हैं या उसको खुदा कहते हैं। ये शराकत क्या है, उसकी बातें मानते थे। अल्लाह का हुक्म भी होता था, शैतान का भी होता था, शैतान का मान लेते थे। मैं इससे बरीउ जिम्मा हूं, ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक सजा यकीनी है। अब बताइए जरा वहां किसको बुरा कहेंगे। रात को तरावी के दौरान एक बच्ची मेरे साथ थी, तो मैं उसको ऐसे ही समझा रही थी कि बेटा बिल्कुल साथ खड़े होते हैं, वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शैतान बीच में आता है। कहने की वो तो बंद है। मैंने कहा वो बंद होकर भी बड़े काम कर लेता है, हम खुले होकर भी वो काम नहीं करते। कभी शैतान की स्ट्रेटेजी हम अपना लेना। मैं कहती हूँ कि दुनिया में खाक फैल जाए, किस तरीके से वो बात करता है। हल दुल्लू को सूरत अल अराफ में पढ़ चुके हैं क्या? फिरौन मैं आपको कुछ बताऊं, यानी उसने फोर्स नहीं किया बल्कि उनको शरीक किया कि मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा काम। तो शैतान को बहुत नफ्सियात पढ़नी आती है। अब आप देखिए कि जब ये मंजर वहां आएगा तो उस वक्त लोगों के दिल की हालत क्या होगी, किसके पास जाएंगे? कभी एयरपोर्ट से सामान ज्यादा निकलवाने की आस में किसी से बातचीत चली हो और ऐन वक्त पे वो शख्स काउंटर भी ना दिखे, और ऐन वक्त में आपको पकड़ा दिया जाए कि या तो फ्लाइट छोड़ें या आप 1 लाख रुपया देकर जाएं, कहाँ जाएंगे? दुनिया में तो मौजूद है। वो लोग उस दिन क्या सोच रहे होंगे जिस दिन शैतान ये सब कुछ कहेगा। और यकीन कीजिए ये इतना बेवफा और इतना जफा वाला है, दुनिया में भी ऐसे करता है। सूरह तौबा में आप पढ़ चुके हैं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, इन्नी अरा मा ला तरऊन, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते। तो शैतान की आदत याद रखिए, हर मुश्किल वक्त पे आपका साथ छोड़ेगा। यही आदत उन लोगों में भी आ जाती है जो शैतान नुमा हो जाते हैं, जो इसके इशारों पर चलते हैं। ऐन दुख के वक्त पे, ऐन तकलीफ के वक्त पे वो छोड़ जाएंगे। अब्दुल्ला बिन उबई अगर 300 लोगों को लेकर जुदा हो गया तो कोई वो वक्त अल्लाह के नबी की हुक्म के ऊपर चलने वाला तो नहीं था। तो शैतान इंसानी रूप में आता है, नेकियां दूर कराता है, आपकी ईशा कजा करा देगा। बस 5 मिनट सो लो, बहुत खा ली है ना, आप वैसे भी तरावी पढ़ूंगी, बहुत अच्छी पढ़ूंगी, नहीं नहीं आप पढ़ी तो मजा ही नहीं आना, फोकस नहीं हो। आप 5 मिनट के लिए बेड पे लेटे तो सही, पता नहीं आंख सहरी पे खुल गई तो खुल गई। तो शैतान पीछे लगा हुआ है, हमेशा बी केयरफुल। आपको मुझे यकीन हो ना कि वो हमारा दुश्मन है, तो हम कभी इतने प्यार से अपने बच्चों को ना कहे चल शैतान चल झूठा, और जान समझ लीजिए कभी अपने बच्चे को शैतान ना कहे, कभी शरीर भी ना कहे। शरीर फाइल का वजन होता है, शर फैलाने वाला और मुस्तकिल शर फैलाने वाला, और शैतान फोलान का वजन कि बहुत जोश के अंदर आके गलत काम करने वाला। अल्लाह ताला हमें इसके शर से दुनिया में भी महफूज रखे। अब इसके बरक्स बहुत खिलती जन्नात तजरी मिन तख्ती हलनहार, बखिलाफ इसके जो लोग दुनिया में ईमान लाए, ऐ अल्लाह हमें दुनिया में ईमान वाला बना दे, और जिन्होंने नेक अमल किए, ऐ अल्लाह हमें नेक अमलों की तौफीक दे, ऐ अल्लाह हमें मोहब्बत दे दे नेकियों से, ऐ अल्लाह हमारी सुस्तियाँ दूर कर दे। वो ऐसे बागों में दाखिल किए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहाँ वो अपने रब के इज़्ज़त से हमेशा रहेंगे। ऐ अल्लाह हमारा नाम भी वहाँ लिख ले, और वहाँ इनके इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। वार्म वेलकम, फूलों के बके दिए जा रहे हैं, आपको देखकर खुशी का इजहार हो रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये ख्वाहिशों से नहीं होती, ये बात सिर्फ दुनिया में नहीं होती। आप देखिए कि ये वो चीजें हैं जो शैतान के जंगल से बचने वालों को मिलेंगी। पीछे शैतान की बात, यहाँ साथ ही जन्नत की बात। वजह क्या है कि दुनिया में दो दौड़ें साथ ही लगी हुई हैं, या शरीयत है या शैतान है, या रहमान है या रजीम है। हर गुना शैतान का दावतनामा है। और आप यहाँ ये भी नोट कीजिएगा कि शैतान का जोर किन लोगों पे चलता है कि जो कमज़ोर होते हैं। अगर आपने इन आयतों में गौर किया हो, पीछे भी बात गुजरी है कि शैतान हमेशा कमज़ोर लोगों को थामता है। कैसे? बस आप देखिए कि सर्दी आती है एकदम, तो अमूमन ठंड किसको लग जाती है? जो फिजिकली कमज़ोर होता है। इसी तरह गर्मी आ जाए एकदम, तो लू किसको लगती है? जो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है। ईमानी तौर पे कमजोर लोगों पे शैतान का कब्जा हो जाता है, बस वैसे सबको डालता है, कुछ तो डांट देता है, खबरदार आउज़ु बिल्ला, डर के दुबक के वो मक्खी जैसा बन के छुप के चला जाता है। सारी हदीसें मौजूद हैं शैतान के बारे में, मक्खी जैसा बन जाता है, डर जाता है, आप आंखें तो निकालें उसको, घूर के वहां जाके जाएगा, लेकिन आप जब उसकी बात पे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, शुक्र है मेरा तुमने ख्याल तो दिलाया, ये सोच तुम्हें कैसे आई, बस ये है कमजोरी वाला ईमान। और याद रखिए कि जो दुनिया में एक दफा शैतान के हाथों पे तर निवाला बन गया, उसकी दुनिया भी बिगड़ी, आखिरत भी बिगड़ी। और कमजोर वो भी होता है जो दुनिया को देखकर इंप्रेस होने लगता है, जिनकी विल पावर कमजोर होती है, जो इखलाकी तौर पे कमजोर होते हैं, हक को देखते हैं अमल नहीं करते। वो कहते नहीं, हम नहीं कर सकते, आजकल नहीं कर सकते। और कमजोर कौन है? जो लूप होल ढूंढ लेते हैं, अमल ना करने की दलीलें ढूंढ लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है दूसरों का सहारा लेकर दीन से अमल छोड़ते हैं। वो ढूंढते हैं ऐसे दीनदारों को कि जो ऐसा दीन सिखा दें कि जिसमें कुछ भी ना हो, ना हिजरत, ना जिहाद, ना नमाज, और ना लाइफस्टाइल बदले, कुछ वजीफे करो, जन्नत में पहुंचते जाओ। ये कमजोर वो होते हैं जो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, ये वो होते हैं जो कहते हैं जो भी होगा इट्स फाइन, जो भी होगा हम बस अपने हाल में खुश हैं, वी विल डू इट व्हेन इट विल बी ओके, जब सूटेबल हालात होंगे फिर मैं तुम्हारा ये नेकी का दावतनामा कबूल करूंगा, और अभी तो मेरी जॉब पक्की नहीं, और अभी तो मेरा ये काम पक्का नहीं। और इस तरीके से लोग, और ये हुक्म, अरे ये तो टाइम बाउंड आई थी, ये मक्का वालों की बात है, और ये तो अब्दुल्ला बिन उबई की बात है, और ये इख्तलाफी बात है, और ये है और वो है, और डोंट वरी बी हैप्पी, लिव इन दिस यू लिव वंस, ऐसी बातों वाले पे शैतान का कब्जा ज्यादा होता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ईमानी और इखलाकी और अमली तौर पर हमें मजबूत कर दे। क्यों हजरत उमर को देखकर शैतान रास्ता बदलता था? क्योंकि उमर कमजोर नहीं थे। आज भी अगर आप में चाहते हैं ना कि शैतान को शिकस्त दें, चाहते हैं ना, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें बेबस कर देता है, हमें सताता है, हमें तंग करता है, तो उसका तरीका एक ही है, अपने ईमान को मजबूत करें, डोज दें अपने आप को, खुद को बांधें, हर वो चीज जो ईमान प्रोड्यूस करे, आपको मुश्किल लगे, कड़वी लगे, बू आए, उसमें से करें। मैं देखा लोग इतनी बुरी बुरी गोलियां खाते हैं, एक गोली याद आती है मुझे सर्बेक्स टी की, नाक बंद करके लोग खाते हैं, इतनी बड़ी ऑरेंज कलर की होती थी, इतनी उसमें बैड स्मेल थी, खाते थे, पता नहीं शायद कैल्शियम होता है उसमें या आयरन था क्या, खाते हैं, मजबूरी है, कैप्सूल के अंदर भर भर के कड़वी गोलियां देते हैं, भी खाओ। तो याद रखिए कि ईमान का कैप्सूल खा लें अगर शैतान से महफूज रखना है। अब अगली आयतों में इस्लाम को एक दरख्त के साथ तशबीह दी गई, आइए देखते हैं। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ने कलमा तय्यिबा को किस चीज से मिसाल दी है? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अच्छी जात का दरख्त जिसकी जड़ जमीन में गहरी जमी हुई और शाखें आसमान तक पहुंची हुई। तसव्वुर में आ रहा, एक बहुत बड़ा दरख्त जमा हुआ, हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। ये मिसालें अल्लाह इसलिए देता है कि लोग इनसे सबक लें। और कलमा खबीसा की मिसाल एक बदजात दरख्त की सी है जो जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, इसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं। ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौले साबित की बुनियाद पर दुनिया और आखरत दोनों में सुबात अता करता है। इसके बरक्स वयुदिल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन, और जालिमों को अल्लाह भटका देता है, और अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे वो करे। यहाँ आप देखिए कि हमने दो मुख्तलिफ मिसालें देखी। कुरान का ये एक अंदाज बड़ा प्यारा है, इसको तमसीली आयात कहते हैं, कि किसी चीज की मिसाल देकर पेश किया गया। आप देखिए कि थोड़ा सा इसको देखते हैं, आप देखिए कि ये एक प्रेजेंटेशन है आपके सामने, अल्लाह ताला ने इस आयत में एक दरख्त की मिसाल दी है, इस्लाम ए टू जी। आप देखिए कि सबसे पहले बीज जमीन में डलता है, जमीन के बंदा मोमिन का दिल बीज डलता है, बीज क्या है? अल्लाह की मोहब्बत का। फिर किसान पानी देता है, पानी क्या है? ये जो इस वक्त आपको मुझे मिल रहा है, तभी तो दिल के सोते हरे हो रहे हैं, तभी तो दिल अंदर से खिल रहा है, वही इलाही इल्म व हिदायत है। फिर आप देखिए, पौधे को पनपने के लिए अच्छे बीज, जरखेज जमीन, उम्दा खाद, पानी और सूरज की भरपूर रोशनी की जरूरत होती है। ये जो सूरज की रोशनी, ये सब क्या है? ये माहौल है, एटमोसफेयर है। आपको मुझे अपना माहौल खुद बनाना पड़ेगा, अपने घर से शुरू कीजिए, उसके बाद बनता जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि जब वो बीज छोटा सा डाला था, सबसे पहले जड़ें निकली। अगर आप देखें, सबसे पहले ईमान बिल्ला, ताल्लुक बिर रसूल, ईमान बिल आखिरा, और ये जड़ें जो है ना, यही अकीदा होता है। जहां जब भी कोई गलत काम करेगा, याद रखिए कि जड़ें खोखली हैं, अकीदा खराब है। ये देखिए, हल्की सी डंठल निकल रही है, कुछ भी नहीं। और पौधे को बाहर निकलने के बाद मुनासिब माहौल की जरूरत होती है। ईमान नेकियों के माहौल में फलता फूलता है, जिसको अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाती है और रसूल का मुकाम समझ आ जाता है, इसकी जिंदगी संवर जाती है। लेकिन स्टिल इट्स वेरी फ्रेजल, कितना कमजोर सा है। अगर इस वक्त सही माहौल ना मिले तो बंदा अपने अकीदे का इजहार ही नहीं कर पाता। कितने लोग हैं दिल में ईमान चुबा के बैठे होते हैं, कुफर के अमल कर रहे होते हैं, वजह क्या है कि अभी माहौल खूबसूरत नहीं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, जड़ें देखिए कहाँ तक गई हुई हैं। सबसे पहले जड़ों पर गौर करें, पहले कितनी छोटी थी। जैसे दरख्त की जड़ें दिन ब दिन बढ़ती हैं, और सुन्नी भी बात है, सही भी हो सकती है, कि जितना दरख्त का ऊपर साया फैलता है उतनी जड़ें भी फैलती हैं। जितना दरख्त को आप यूं देखें तो अंदर जड़ें हैं। वक्त के साथ, ईमान के बढ़ने के साथ साथ इंसान के दिल में अल्लाह, उसके रसूल की मोहब्बत और आखरत पर यकीन और मजबूत होता है। फिर यहीं से तवक्कुल फूटता है, यहीं से शुक्र फूटता है, यहीं से अल्लाह की रजा पे राजी रहना फूटता है। और आप देखिए, वो जड़ें फूटी तो वो पतला सा जो एक डंडा निकला था ना, अब एक तने की सूरत में ढल गया। तना क्या है इस्लाम के दरख्त में? इबादत, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, नमाज, रोजा, हज, जकात, दुआ, जिहाद। ये पिलर मजबूत कब होगा? जब अंदर जड़े मजबूत हैं। कभी हो सकता है अंदर बहुत जड़े और ऊपर तना कच्चा सा हो। अब जब ये बड़ी, जब आपकी इबादत पुख्ता होंगी ना, तो फिर आगे देखिए, मुआमलात, हकूक उल इबाद, सदका खैरात, ये इबादत, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हुआ तो फिर लोगों से ताल्लुक जरूर अच्छा होगा, फिर आपका अखलाक अच्छा होगा। पत्ते के अखलाक क्या आते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमोसफेयर, पत्तों से आपका अखलाक है। बंदा है मोमिन का मुआशरती फलाह बहबूद में हिस्सा होता है, वो कट्टा छटा नहीं रहता, वो मुआशरे को ऑक्सीजन भी देता है, वो फ्रूट्स भी देता है, और उसका अखलाक बड़ा प्यारा होता है। पौधा जब तनावर दरख्त बनता है तो ना सिर्फ ये कि माहौल की खूबसूरती में इजाफे का सबब बनता है, बल्कि धूप में छांव देकर ठंडक भी फ्राहम करता है, दूसरे जानदारों के लिए ऑक्सीजन मुहैया करता है, और अपने फलों के जरिए सबकी भूख मिटाता है। यही काम एक मोमिन अपने अखलाक से करता है और माशरे को फायदा देता है। वम यन फोन्ना सुफयमकुस, यहाँ चंद सवाल खुद से करते हैं। मैंने अभी तक सोसाइटी को क्या दिया? और नाम लेके कहती हूँ, मैंने फ्रांस को अभी तक क्या दिया? और मैंने नॉर्वे को अभी तक क्या दिया? और मैंने यूके को अभी तक क्या दिया? और मैंने अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान को क्या दिया? मैंने इंडिया को क्या दिया? मैंने बांग्लादेश को क्या दिया? याद रखिए, कुछ देंगे तो बचेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें दरख्त बना दे। अब इसमें तसव्वुर में लाइए, जड़ें तो हैं और बीच में से तना गायब कर दिया जाए, दरख्त बाकी रहेगा। ये उन लोगों की मिसाल है जो नमाज रोजा नहीं करते, कहते हमारे अंदर बड़ा ईमान, अंदर ईमान है जी, तो बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्या चीज रोक रही है? आप देखिए, मट्टी को अगर आप खोदते हैं ना, तो बड़े बड़े टूल्स यूज करते हैं किसान, आपने देखे होंगे, वो जैसे हल जोतने के आले होते हैं, पता नहीं क्या कुछ उसका नाम है, वही मट्टी जिसको खोदने के लिए आपको औजार चाहिए, एक कच्चा पतला सा पौधा उसको हटाकर बाहर कैसे आता है? ईमान इजहार चाहता है। ईमान में वो ताकत है जो बड़े बड़े फावड़ों में भी नहीं होती। ईमान कभी छुपा नहीं रहता, ईमान को आप कभी दबा नहीं सकते, ईमान गूंगा नहीं है, ईमान कभी हालात की खराबी का शिकार करके सो नहीं जाता। ईमान तो मुखालफतों में और बढ़ता है। गर्मियों में पौधे ज्यादा फलते हैं, हमारा कद गर्मियों में ज्यादा बढ़ता है। तो याद रखिए कि तुंदी वादे मुखालिफ से ना घबरा, के औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपकी मेरी जिंदगी में जहां जाती इनफरादी इज्तमाही मसाइब परेशानी आए, वहां ईमान का इजहार कीजिए, वो सब चली जाएंगी। और अगर आप देखिए कि सिर्फ डंडा ही रख लीजिए और ऊपर से सारा झाड़ काट दें, तो भी दरख्त नहीं, वो एक पिलर ही है। ये उन लोगों की मिसाल है जो सिर्फ दीन को नमाज रोजा हज जक़ात में समेटे हुए हैं। दीन का सरसब्ज शादाब दरख्त बनना है तो जड़ों में ईमान, अल्लाह की मोहब्बत, तवक्कुल, शुक्र, राजी व रजा, और आमाल में इबादात, पुख्तगी, और लोगों में चलिए तो मामलात बन के। तो देखिए, ऐसे दरख्त कितने लोग हैं दुनिया में, मुसलमान कहने वाले, कहलाने वाले, 2 बिलियन किसी ग्लोब पर, 2 बिलियन मोमिन हो ना इस तरह के जैसा ये मोमिन है, पूरी दुनिया पे अल्लाह का कलमा बुलंद हो चुका होता। यहां मैंने टुंड मुंड दरख्त बनाकर अपने आप को कटे फटे दीन की सूरत में पेश करके दुनिया को भी इसकी खूबसूरती से महरूम कर दिया। अल्लाह ताला हमारी आंखें खोल दे। और अल्लाह साबित कहाँ करता है? दुनिया में भी करता है और आखिरत में भी, कब्र में भी। मुनकर नकीर के सवालों पे अल्लाह ऐसे ही लोगों को साबित कदम रखेगा। यही 3 सवाल जो अकीदे से मुतल्लिक है कब्र में होंगे, मन रब्बू का, मन रसूलू का, मा दीनू का। जिसका अकीदा खराब है वही फंस जाएगा, जो रसूल के मामले में गलूफ किया हुआ है वही हैंकी पैंकी लगा होगा दीन की बात, और जिन्होंने दीन माशाल्लाह सारे अदियान को मिलाकर एक चूंचू का मुरब्बा बनाया, उनको वहां अल्लाह, रसूल और इस्लाम 3 लफ्ज जुबान पे नहीं आएंगे। हदीस में आता है, लादरी लादरी बोलेगा कब्र में बंदा मुनकर नकीर के सवाल पे, मुझे नहीं पता। एक रिवायत में आता है, वो कहेगा जो लोग कहते थे मैं वही कहता था, लोगों ने अल्लाह का मैंने भी कह दिया, लोगों ने रब कह दिया मैंने भी किया, तो आज वक्त है, आज मुझे आपको अल्लाह ताला ने जिंदगी की दौलत दी है, इससे फायदा उठाना है, वरना क्या होगा? आगे देखिए, ना शुक्री की सजा।